مسیح میں عزیز بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید، The Feast of Ascension of Christ، عید سعود المسیح، آپ سبوں کو بہت مبارک ہو۔ بہت سے لوگوں کو اس دن کی بابت پہلے علم ہوگا، تو بھی اس دن کی مناسبت سے آج پھر ہم ان باتوں کو سیکھیں گے اور یہ تعلیم ہم ریفریش کریں گے، ہم تازہ کریں گے اور سیکھیں گے ہم یوم سعود المسیح کی اہمیت، سگنیفیکینس آف دا ڈے آف کرائسٹ اسینشن، یعنی مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے دن کی اہمیت کیا ہے، کیوں ہمارے لیے یہ دن بہت اہم ہے، اور اس دن میں کون سی ایسی باتیں واقع ہوئیں جو ہمارے مسیحی ایمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے انہیں جاننا، انہیں سمجھنا اور انہیں اپنانا۔ سو اس دن میں جو پہلی بات ہوئی وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا انہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یہ بہت اہم بات تھی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو خاص اس دن بتائی کہ جس دن وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہم بائبل مقدس میں یہ پڑھتے ہیں، جب مسیح خداوند نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا، جب بپتزم کے بعد اس کی ٹیمپٹیشن ہوئی، جب شیطان نے اسے آزمایا، تو شیطان نے یہ امپریشن دیا، اس کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ ساری بادشاہتیں، ساری حکومتیں، ساری شان و شوکت، ساری دولت، all the riches and the governments and the authorities، شیطان نے یہ امپریشن دیا کہ میری ہیں، اور تو اگر میری بات مان لے، میرے سامنے جھک جائے، مجھے اوبے کر لے، میرے تابع ہو جائے، تو میں یہ سب تجھے دے دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ بات بتا کر ان کا ایمان بڑھا رہا ہے، ان کا یہ عقیدہ ڈیویلپ کر رہا ہے، یہ کریڈ ڈیویلپ کر رہا ہے، ان کا فیتھ ڈیویلپ کر رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں آیا، تعلیم دی، معجزے کیے، مر گیا اور جی اٹھا اور اب جا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھو کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، آئی ہیو آل اتھارٹی اوور دا ہیونز اینڈ دا ارتھ۔ کوئی کام خداوند یسوع مسیح کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر نہ آسمان پر ہو سکتا ہے نہ زمین پر۔ اور ہم مسیحیوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب تک ہمارا خداوند اجازت نہ دے، کوئی دکھ، کوئی طوفان، کوئی بلا، کوئی آفت، کوئی وبا ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا، جب تک کہ ہمارا خداوند اپنی خاص مصلحت، اپنی حکمت یا اپنے کسی بڑے منصوبے کی وجہ سے الاؤ نہ کرے، اجازت نہ دے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے سعود کے دن یہ بتا دیا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ایمانداروں پر ابلیس کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ جتنے مسیح یسوع میں ہیں وہ سزا سے بھی چھوٹ چکے ہیں، گناہوں سے مخلصی پاتے ہیں، موت سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ابلیس کے شکنجوں سے چھوٹ جاتے ہیں، گناہ کے اثر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اختیار رکھتا ہے آسمان اور زمین پر، اور کچھ بھی اس کی اجازت یا اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی کسی طرح کا شک ہے، انبیلیف ہے، ڈاؤٹ ہے، तो उसे निकाल फेंकिए। हमारा खुदामंद इस काबिल है कि वह अपने लोगों की मदद कर सकता है, वह अपने लोगों को बचा सकता है, वह अपने लोगों की हिफाजत कर सकता है, वह अपने लोगों की हर जरूरत में उनके काम आ सकता है, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के पास है और यीशु मसीह ने यह इख्तियार मुफ्त में नहीं लिया। कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत बड़ा इख्तियार, बहुत बड़ी दौलत और शोहरत और नाम और रुतबा और मुकाम और स्टेटस और रिचेस और वेल्थ अपने बाप दादा से इनहेरिटेड या विरसे में मिल जाती है, उसमें उनका कोई कमाल नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानी बाप से ये इख्तियार और ये सारी अथॉरिटी मुफ्त में नहीं ली, आसानी से नहीं मिली, बल्कि बाइबल में लिखा है उसने अपनी जान देकर वफादारी और फरमा बरदारी साबित की। इसी वास्ते खुदा ने भी, बाप ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसी के आगे झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, और खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह ने आसानी से यह नहीं लिया, यीशु मसीह ने आराम से यह इख्तियार नहीं लिया, ही हैज अर्नड इट। कई लोग होते हैं जो पैसे देकर डिग्रीज ले लेते हैं, क्वालिफिकेशन अपनी प्रिटेंड करते हैं कि हम क्वालिफाइड हैं, दे परचेज द डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस खरीद लेते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने लिए जॉब्स पैसा दे के, ब्राइब दे के अपने लिए खरीद लेते हैं। खुदावंद यीशु ने कोई ब्राइब नहीं दी, खुदावंद यीशु ने अनफेयर मींस यूज नहीं किए, खुदावंद यीशु ने धोखे से नहीं ली, खुदावंद यीशु मसीह ने किसी का हक मार के नहीं लिया, खुदावंद यीशु मसीह ने सोते हुए ये नहीं ले ली, बल्कि यीशु मसीह ने इसके लिए अपनी जान दी। बाप के ताबे रहा, फरमा बरदार रहा, और इतना फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसने मौत के साथ जंग की, उसने इब्लीस के साथ जंग की, और वो गालिब आया, तब जाके ये साबित हुआ कि ये हकीकी तौर पर विनर है, फाते है, ही इज विक्टोरियस, और वो चैंपियन है। सो यीशु मसीह का इख्तियार इस दिन जाहिर होता है, यीशु डिक्लेयर करता है कि आसमान और जमीन पर मेरा इख्तियार है, ही हैज द अथॉरिटी ओवर हेवंस एंड अर्थ। ईद सऊद हमें याद दिलाती है कि आसमान पर और जमीन पर और कायनात में कोई और मालिक नहीं है सिवा यीशु के। ये वो दिन है जब हमें बताया गया कि यीशु अथॉरिटी रखता है, ही इज ऑल पावरफुल इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ। और इस दिन यीशु ने अपने लोगों के साथ हमेशा रहने का वादा किया। वो फिजिकल प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ चलता फिरता खाता पीता बात करता तुम्हारे साथ रहूंगा, नहीं, स्पिरिचुअली इन हिज पावर एंड अथॉरिटी ही विल बी विद हिज पीपल फॉर एवर। वो अपने इख्तियार में, अपने जोर में, अपनी ताकत में, अपने जलाल में, अपनी हशमत में, अपनी कुदरत में अपने लोगों के साथ हमेशा तक रहेगा। वो कभी अपने लोगों से दूर नहीं होगा, वो गैर हाजिर नहीं होगा, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन हिज स्पिरिट। वो अपने रूहुल कुद्स में, वो अपने रूह में हर जगह अपने लोगों के साथ हमेशा मौजूद है। खुदावंद यीशु ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, व्हेरेवर टू और थ्री विल गैदर इन माय नेम, आई एम देयर, मैं वहां मौजूद हूं। जब भी हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं, यीशु के नाम पे हम एक जगह जमा होते हैं, भले दो हो या तीन हो या अनगिनत जमात हो, यीशु के नाम पे जब हम जमा हो जाते हैं, यीशु वहां मौजूद होता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेला चल रहा हूं तो यीशु मेरे साथ नहीं, क्योंकि उसने दो, कम से कम दो की हद लगाई है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो। खुदावंद यीशु ने कम से कम दो कहा, जब मैं अपने अंदर खुदा का रूह रखता हूं तो मैं एक नहीं रहता, बल्कि मेरे अंदर दूसरा खुदा का रूह हो जाता है, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। जब मैं अकेला होता हूं तो तब भी मैं अकेला नहीं होता, क्योंकि खुदावंद का रूह मेरे साथ और मेरे अंदर है। और जब मैं यीशु के नाम में रूहुल कुद्स के साथ इन एग्रीमेंट हो जाता हूं तो यीशु मेरे साथ होता है, क्योंकि वो रूह यीशु का है। द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। जो कुछ यीशु ने वादा किया वो पूरा किया, और आज भी वो अपने लोगों के साथ है, और ये वादा उसका आज तक जारी है और हमेशा तक जारी रहेगा, क्योंकि वो जिंदा है और वो भूलता नहीं, वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। उसने जो वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ है। आप अपनी मुसीबतों और मुश्किलों और दुखों में ये मत सोचिए कि हम अकेले पड़ गए हैं। अगर अकेले पड़े हैं, खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो ये मेरी और आपकी गलती है कि हम खुद को अकेला समझते हैं, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा मददगार भी है जो रूह कुद्स है। और हमारा खुदावंद यीशु ये वादा कर चुका है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम उसको आवाज नहीं देते, हम उसको बुलाते नहीं हैं, हम उसे शामिल नहीं करते अपने कामों और मामलों और परेशानियों और दुखों में। हम इसलिए अकेला महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि यीशु को हमने दावत नहीं दी कि वो हमारे हालात का हिस्सा बन जाए, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, वो हमारे हालात में मुदाखलत करे और उन्हें ठीक कर दे। उसने तो वादा कर रखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सवाल पैदा होता है, क्या हम उसके साथ हैं? आर वी विद हिम? ही इज विद अस, बट आर वी विद हिम? क्या हम उसके साथ हैं? क्या हमने उसे कबूल किया है? क्या हमने उसे इनवाइट किया और दावत दी हुई है कि नहीं? तो ये सऊद का दिन बहुत अहम है। इस दिन यीशु ने हमें कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इस दिन में हमें अपने इस फेथ, अपने अकीदे, अपने ईमान को रिवाइव करना, ताजा करना है कि खुदावंद, मैं खुद को अकेला महसूस करता था, लेकिन मैं आज अपने इस ईमान को ताजा करता हूं, ताजा करती हूं कि तू मेरे साथ है, मुझे तेरे वादे पर भरोसा है। अब से मैं अकेला नहीं हूं, अब से मैं अकेली नहीं हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। So, ये दिन बहुत अहम है। ये हमें याद दिलाता है कि यीशु के पास है इख्तियार आसमान का भी और जमीन का भी, और वो तमाम अथॉरिटी रखने वाला, वो तमाम इख्तियार रखने वाला कहता है मैं तेरे साथ हूं। जब वो मेरे साथ है तो मुझे आसमान और जमीन के किसी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर जिसका इख्तियार है वो मेरे साथ है। और यीशु ने इस दिन रूह कुद्स भेजने और कुवत अता करने का वादा किया। अमाल की किताब के पहले बाब में यह वाक्या लिखा हुआ है कि आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने कहा कि तुम इसी शहर में ठहरे रहना, यरूशलम में, यहूदिया में और सामरिया, और फिर दुनिया की इंतहा तक, जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे, क्योंकि रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम कुवत पाओगे उस रूह कुद्स के वसीले से जो खुदावंद यीशु का रूह है, जो बाप और बेटे का रूह है, जो यीशु ने वादा किया कि तुम ठहरे रहना यहीं और रूह कुद्स नाजिल होगा। यह वो दिन है जब यीशु मसीह ने पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी वजाहत के साथ, विदाउट एनी एम्बिग्विटी उनको यह बता दिया था कि उन्हें क्या करना है। रूह कुद्स आएगा और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे और वो ताकत किस काम के लिए होगी। सऊद का दिन हमें याद दिलाता है कि वो दूसरा मददगार خدا باپ اور بیٹے کا روح، وہ کامل خدا جس کی ستائش باپ اور بیٹے کے ساتھ ازل سے ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے گی، وہ خدا کا روح ہمیں بخشا گیا ہم میں رہنے کے لیے، ہم میں ہو کر کام کرنے کے لیے ہمیں بخشا گیا کہ اس کی طاقت سے ہم معمور ہو جائیں اور بہت بڑے بڑے کام کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے پوری کلیئرٹی سے، کسی ابہام کے بغیر، کسی کنفیوژن کے بغیر، الجھن کے بغیر کلیئرلی بتا دیا کہ تم ٹھہرے رہنا اور روح القدس نازل ہوگا۔ جانے سے پہلے اس نے پوری انسٹرکشنز دے دی، واضح طور پر بتا دیا کہ روح القدس آئے گا، تمہیں کیا کرنا ہے اور اس کی طاقت کس کام کے لیے ہوگی، ہم روح القدس کو کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم روح القدس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فارچون ٹیلر ہے، یہ مستقبل کے بھید بتانے والا ہے، روح القدس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ ہماری راست بازی کے نشان کے طور پر لوگوں کو دکھنا چاہیے کہ میں روح میں کتنا مضبوط ہوں، ہر ایک بات، ہر ایک کام، ہر ایک پریکٹس ہم روح القدس کے نام پہ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ کام تو مجھے روح القدس نے کہا تھا کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح نے واضح کیا زمینی زندگی میں بھی اور آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے بھی کہ روح القدس کس لیے اترے گا، کس کام کے لیے وہ ٹھہرے گا اور تم سے وہ کیا کیا کام لے گا۔ سعود کا دن، آسمان پہ اٹھائے جانے کا دن ہمیں روح القدس کی بخشش اور اس بخشش کے مقاصد کی بابت یاد دلاتا ہے کہ وہ کیوں اترے گا، اور پھر اترا تو اس کی خدمت کا دائرہ کیا ہے، نوعیت کیا ہے، واٹ از دا نیچر آف دا منسٹری آف دا ہولی اسپرٹ۔ سو یسو نے جو وعدہ کیا اٹھائے جانے، آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے، وہ پورا بھی ہوا۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے یسوع وعدوں میں سچا ہے، اور یسوع نے شاگردوں کو تمام قوموں میں منادی کرنے، گواہی دینے اور قوموں کو شاگرد بنانے کا حکم دیا، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اختتام پر، مرقس کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اختتام پر، اور پھر مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اختتام پر، اور پھر رسولوں کے اعمال کے آغاز میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ گریٹ کمیشن، یہ ارشاد اعظم، یہ بہت بڑا حکم خداوند یسوع مسیح کا لکھا ہوا ہے کہ سب قوموں کو خوشخبری سناؤ، سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، ساری خلق کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرنا اور انہیں میرے شاگرد بنانا۔ خداوند یسوع مسیح نے کلیئرلی مینڈیٹ دے دیا، ہمیں ہمارا مقصد بتا دیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے کہ شاگرد بنانا ہے۔ شاگرد جو اپنے استاد کے ارد گرد رہے اسے کبھی دور نہ جائے، ڈسائپل جو اپنے ٹیچر کو فالو کرے، میکسیمم فالو کرے اور کوشش کرے کہ میں نے ٹیچر کے جیسا بننا ہے، اس کے قدموں پہ قدم رکھے، اس کے نقشے پا پہ چلے، اس کے فٹ پرنٹس پر چلے، تو مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے بھی شاگرد بننا ہے اور دوسروں کو بھی شاگرد بنانا ہے۔ اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں جی استاد بن جائیں، ہم ٹیچر بن جائیں، وی ٹرائی ٹو بی ٹیچرز، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو مینڈیٹ دیا ہے، جو گریٹ کمیشن دیا ہے، جو حکم دیا ہے، ارشاد اعظم دیا ہے، وہ شاگرد بننا اور شاگرد بنانا۔ استاد بننے کے لیے بھی پہلے شاگرد بننا ضروری ہے۔ اگر ہم شاگرد نہیں بن سکتے، شاگرد بننے کو تیار نہیں ہے، تو ہم کبھی کسی اور کو شاگرد بنا نہیں سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شاگرد بنانے کی ذمہ داری صرف بڑے بڑے خادموں کی نہیں ہے، ہر ایک مسیحی ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود شاگرد بنے یسوع کا اور پھر دوسروں کو شاگرد بنانے کے لیے اپنی ہر کوشش عمل میں لائے۔ ہم خود بھی شاگرد بنیں और दूसरों को भी मसीह के शागिर्द बनाने के लिए जो हमसे हो सके वो करें। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हमें क्या बनना है और दूसरों को किस तरह मसीह के शागिर्द बनाना है। इसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है। और ये दिन ऐसा है जिसमें यीशु ने हाथ उठाकर शागिर्दों को बरकत दी। लूका की मार्फत लिखी गई इंजिली बयान के आखिरी हिस्से में ये लिखा हुआ है, फिर वो उन्हें बैत अनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया। शागिर्दों ने यीशु का आखिरी नजारा जो किया उठाए जाने से पहले, वो उसके बरकत देने के लिए फैले हुए हाथ और उसकी जुबान से बरकत के निकलते हुए अल्फाज थे। कितनी मुबारक हाली की बात है कि उन्होंने यीशु को बरकत देते हुए देखा, उसके मुंह से बरकत के जुमले सुने और बरकत देते देते ही वो उनसे उठा लिया गया। गोया यीशु को देखते हुए उसके उठे हुए हाथ और उसकी जुबान से निकलते हुए बरकत के अल्फाज उनकी याद में हमेशा के लिए महफूज हो गए। यीशु मसीह बरकत देते हुए गया, उसकी बरकत के हाथ रुके नहीं हैं, उसकी बरकत आज भी जारी है, उसकी जुबान से निकले हुई बरकत आज भी जारी है, उसके भरे हुए हाथों की तासीर और बरकत आज भी जारी है। यह दिन याद दिलाता है कि हमारी जिंदगियों में, हमारे ईमान में, हमारे अकीदों में, इन आवर फेथ, इन आवर क्रीड, इन आवर लाइफ, इन आवर हेल्थ, इन आवर रिसोर्सिस, इन आवर फैमिलीज, व्हाटएवर ब्लेसिंग वी हैव, दैट इज बाय द हैंड्स एंड बाय द लिप्स ऑफ जीसस। वो यीशु मसीह की जुबान से निकली हुई बरकत और उसके हाथों से निकली हुई बरकत है जो आज तक हम ले रहे हैं। सो ये दिन याद दिलाता है कि वो बरकत दे रहा था और आज तक उसकी बरकत जारी है। और उस दिन शागिर्दों ने इस अकीदे को पक्का कर दिया, इस अपने फेथ को फर्म फेथ बना दिया कि उनके लिए यीशु मसीह कोई खाली एक नेक उस्ताद नहीं था, वो कोई आम रब्बी नहीं था, वो कोई स्पिरिचुअल लीडर, कॉमन स्पिरिचुअल लीडर नहीं था, बल्कि उनके लिए वो खुदा था, वो इस काबिल था कि उसको सजदा किया जाए। तमाम शागिर्द पक्के फर्म ज्यूइश फेथ के थे, वो यहूदी ईमान के हामिल थे, उनके लिए वाहिद खुदा के अलावा किसी और को सजदा करना तो मुमकिन ना था। लेकिन इतना जरूर जानते थे कि वाहिद खुदा की जात में वो आदमजाद भी है, वो खुदावंद भी है कि जिसकी बाबत दानियेल के सहीफे में, जबूरों में, यसाया जैसे नबियों के सहीफों में ये लिखा हुआ है कि वो कदीमुल अय्याम है, वो ऐसी हस्ती है जिसके बारे में दाऊद ने कहा, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा मेरे दाहिने तरफ बैठ। वो जानते थे कि यीशु वो है जो खुदा की जात में से आया है, खुदा का बेटा है और जिस्म में खुदा है। उन्होंने उस दिन उसे सजदा किया। शागिर्दों ने उसे आसमान पर जब जाते हुए देखा तो सजदा किया, दे वर्शिप्ड हिम, दे बो डाउन, और यह जाहिर किया कि यीशु मसीह सिर्फ आम इंसान, उस्ताद, रिलीजियस लीडर, मजहबी उस्ताद, रबी या स्पिरिचुअल टीचर नहीं है, बल्कि वो कामिल खुदा है। ही इज वर्दी ऑफ वर्शिप। इसी दिन यीशु आसमान पर उठाया गया, क्योंकि जहां से वो आया था वहां उसे वापस जाना था। यीशु आम इंसान नहीं था, کہ وہ یہیں مرا پڑا رہتا، قبروں میں رہتا، وہ خدا کا بیٹا، اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتو، وہ اول اور آخر، الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، وہ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، خدا کا بیٹا اس دنیا میں جسم لے کر آیا تھا، اس نے اپنے آنے کا مقصد پورا کیا، انسانوں کی نجات کے لیے فدیے میں اپنی جان دی، کفارے کا انتظام کیا، گناہوں کی معافی اور مخلصی کا انتظام کیا، اور موت اور قبر اور گناہ اور جسم اور ابلیس پر، دنیا پر فتح پا کر، زندہ ہو کر اپنے شاگردوں کو دکھائی دے کر اس سے واپس اپنے باپ کے پاس جانا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا۔ دکھ اٹھانے سے اور مرنے سے اور جی اٹھنے سے بھی پہلے اس نے بتا دیا تھا کہ میں آسمان پر جاؤں گا، تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا۔ یہ وہ دن ہے جب یسوع مسیح نے اپنے وعدوں کی تکمیل میں ایک اور وعدہ پورا کر دیا کہ وہ آسمان پر چلا گیا۔ اس کا آسمان پر اٹھایا جانا ضروری تھا، اگر وہ آسمان پہ نہ جاتا تو پھر اس کے خداوند ہونے پہ، پھر اس کے مسیحا ہونے پہ، پھر اس کے نجات دہندہ ہونے پہ سوال اٹھتے اور شک پیدا ہوتے، کیونکہ یسوع کا آسمان پر جانا ہماری نجات کی تکمیل کے لیے ضروری تھا۔ اور یسوع اس دن باپ کے دہنے ہاتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ میں پہلے بھی اپنی کلیسیا میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ رائل کورٹ میں، شاہی دیوان میں، دربار میں، بادشاہ کے داہنے ہاتھ جو کرسی، جو سیٹ رکھی جاتی ہے، اس پہ بادشاہ اپنی مرضی سے جسے وہ چاہے اسے بٹھاتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ بحرین میں یہ ایکسپیرینس کر چکا کہ وہ سیٹ داہنے ہاتھ والی بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو وہ دینا چاہے، اس پورے ہال میں، دیوان میں، دربار میں، جسے وہ سب سے زیادہ عزت دینا چاہے اسے وہ اپنے داہنے ہاتھ جگہ عطا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے داہنے ہاتھ بیٹھنے کا اعزاز، یہ آنر آسانی سے نہیں لیا، پھر وہی بات کہ اس نے بڑی محنت اور مشقت کی، دکھ سہا، اور پھر وہ اس قابل ہوا کہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھے۔ وہ باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا ہے، فرما بردار رہ کر، دکھ سہ کر، باپ کا حکم مان کر، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، اپنے سارے فرض پورے کر کے، جو مشن اس کا تھا اسے پورا کر کے وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور یہ دن ظاہر کرتا ہے کہ باپ اور بیٹا ایک ہیں، وہ ایک جگہ پر ہیں، اور ان میں کوئی دوری، کوئی اختلاف، کوئی ڈسٹینس، کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہیں۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ یسوع باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا ہے جہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کا مقام وہ ہے کہ کوئی بھی ہستی، کوئی بھی نام اس کو دے دیں، کوئی رتبہ اور عہدہ اس کے نام کے ساتھ لگا لیں، چاہے دنیاوی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دینی ہو، کسی بھی طرح کا عہدہ، رتبہ اور مرتبہ اس کے نام کے آگے پیچھے جوڑ لیں، کسی ہستی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ وہ خدا باپ کے داہنے ہاتھ تخت پر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صرف میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو یہ اعزاز، یہ اختیار اور یہ عزت حاصل ہے۔ سو ہم بڑے وثوک سے کہہ سکتے ہیں، ایمان میں قائم اور مضبوط ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ میں جس پر ایمان رکھتا ہوں وہ تخت نشین ہے، وہ نہ زمین میں ہے، نہ کہیں بھٹک رہا ہے، بلکہ وہ تو پہلے ہی تخت نشین ہو چکا ہے۔ اور یسوع ہماری شفاعت کے لیے ہر وقت باپ کے پاس موجود ہے۔ اور یہ دن یاد دلاتا ہے کہ اب باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے کہا تھا، جو دعا میرے نام سے کرو گے وہ قبول ہو جائے گی، جو کچھ میرے نام سے باپ سے چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا، اور جو کچھ تم مجھ سے چاہو گے وہ میں تمہارے لیے کر دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے دعائیں مانگنے کا ہمیں یہ فائدہ ہے کہ جب ہم اپنی دعاؤں پہ یسوع مسیح کا نام لگا دیتے ہیں، جیسے ہم اپنے لیٹرز پر، چٹھیوں پر ایڈریس کر دیتے ہیں، اس کے اوپر فار دا اٹینشن آف لکھ دیتے ہیں، जब हम अपनी दुआओं को यीशु मसीह के नाम में छुपा देते हैं तो वो दुआएं कहीं रुकती नहीं, वो सीधी यीशु मसीह के पास जाती हैं और यीशु मसीह उन दुआओं को आसमानी बाप के साथ शेयर कर देता है कि इन लोगों ने मेरे नाम से ये दरख्वास्त यहां पहुंचाई है, ऐ बाप ये जारी कर दे क्योंकि ये मेरे नाम से आई है, ये मेरे नाम से पेश की गई है हमारे लिए वकील बन के, एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर इन द कोर्ट। वो बाप के पास मौजूद है और वो बाप से कह देता है इस ईमानदार ने ये दुआ मांगी है और मेरे नाम से मांगी है और मैं आगे ये दुआ अब ऐ बाप तेरे पास पेश करता हूं, इसे जारी कर दे क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं कि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये मसीह के आसमान पर उठाए जाने का दिन यह याद दिलाता है कि हमारी दुआएं अब कबूल हो चुकी, अब हमारी दुआओं के कबूल होने में कोई रुकावट नहीं क्योंकि यीशु वहां मौजूद है हमारी शिफात के लिए। For our intercession, He is there, present over there, to intercede for us. हमारी दुआओं की कबूलियत वो करवा देता है, वो बाप से दरखास्त कर देता है, रिक्वेस्ट कर देता है, वो बाप को कायल कर देता है, वो उसे राजी कर लेता है और वो जानता है कि बाप तो उसे ना नहीं करता, बाप उसे इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसने बाप को इनकार नहीं किया था, उसने बाप की किसी बात को रद्द नहीं किया था। बाप ने कहा तुझे जाना है और कुर्बान होना है, वो फरमा बरदार हुआ और उसने वो नाम पाया जो सब नामों से आला है, उसने वो मुकाम पाया जहां कोई और नहीं पहुंच सकता, वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और हमारी शिफात करता है, हमारे लिए बाप से दरख्वास्त करता है और यीशु हमारी मदद के लिए हर वक्त मौजूद और तैयार है। यीशु सोता नहीं है, यीशु छुट्टी नहीं करता, वो तो 24 घंटे एट सर्विस है, हर वक्त हमारी मदद के लिए मौजूद है, हर वक्त हमारे साथ देने के लिए तैयार है, मौजूद है और तैयार है, ये दो अलग बातें होती हैं। लोग हमेशा ऐसे भी मिलते हैं हमारे साथ होते हैं, दिखते हैं कि हमारे साथ है लेकिन मदद कर नहीं सकते, मदद के लिए तैयार नहीं होते, दिल से तैयार नहीं होते, दिखावे के लिए साथ होते हैं, लेकिन यीशु वो है कि जो मदद के लिए मौजूद भी है और तैयार भी है, जो मदद करने के काबिल भी है। यह दिन मसीह के आसमान पर उठाए जाने का दिन हमें यह याद दिलाता है, इसकी अहमियत यह है कि इस दिन पता चलता है हमें कि यीशु आसमान पर हमारी मदद के लिए मौजूद भी है और तैयार भी है। कोई काम मुश्किल नहीं अब मसीहियों के लिए, कोई तूफान इतना बड़ा नहीं कि जो हमें हरा सके, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई तंगी इतनी बड़ी नहीं कि जो हमें गिरा सके, हमारा मददगार जिंदा है और मौजूद है और मदद के लिए तैयार भी है, हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमने शुरू में गाया ना, हम डरने वाले नहीं, पामे जेकर हर भी आवन नाले पानी कर्ण शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा दा पामे छट जान जा, हम डरने वाले नहीं क्योंकि रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, हम डरने वाले नहीं खा जमीन उलट जाए खा पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, हम डरने वाले नहीं क्योंकि हमारा मदद करने वाला जिंदा है, हर वक्त मौजूद और तैयार है। फरिश्तों ने यीशु के उसी तरह से वापस आने की खुशखबरी दी उस दिन, शागिर्दों ने देखा कि यीशु बरकत देते हुए उठा लिया गया, यीशु ने खुशखबरी का पैगाम फैलाने के लिए उन्हें हिदायत दी, यीशु ने रूह कुछ के नजूल और उसकी खिदमत के बाबत उनको बता दिया क्लैरिटी के साथ। यीशु उठा लिया गया तो फरिश्ते आते हैं और वो उनसे बात करते हैं, गलीली मर्दो क्या देखते हो, इसी यीशु को जिसने तुमने ऐसे जाते हुए देखा इसी तरह वापस आते हुए देखोगे, हम ईमानदार उसे देखेंगे, हर एक आंख उसे देखेगी जब वो आएगा। यीशु अब आसमान पे सिर्फ रुका हुआ नहीं, ठहरा हुआ नहीं, वो रूह में हर वक्त हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे दरमियान है, हमारी मदद के लिए तैयार और मौजूद है और वो पूरी आबोताब के साथ in full power and glory and authority. He is going to come back. Soon, he is coming soon. जल्द आने वाला है. फरिश्तों ने कहा है कि वो आएगा. खुशखबरी सुना दी है कि वो हमसे दूर नहीं रहेगा. वो आएगा और कुदरत के साथ आएगा. We believe in the words of angels. इस दिन खुशखबरी मिली थी कि यीशु दूसरी बार आएगा, अदालत करने को आएगा, अपने लोगों को ले जाने आएगा. यीशु के वादे सच्चे हैं और हर सूरत पूरे होते हैं. उसने जितने वादे पहले किए वो पूरे किए. आज तक वो वादे पूरे कर रहा है. हर रोज हम उसके इस वादे को पूरा होता देखते हैं कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है. जहां दो या तीन उसके नाम से जमा होते हैं वो उनके बीच होता है. हम उसके वादे को पूरा होता हुआ हर रोज हर पल महसूस करते हैं. We experience the fulfillment of his promises each and every moment. He is with us till the ends of the times. दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है. उसके वादे सच्चे हैं, उसके आने का वादा भी. The promise about his second coming is also a true promise. It will be fulfilled. वो पूरा होगा, जरूर पूरा होगा. उसके वादे अटूट हैं, टूटने वाले नहीं हैं. उसके वादे कच्चे नहीं हैं, सच्चे हैं और पूरे होते हैं. जो कुछ उसने अपनी जमीनी जिंदगी में कहा वो लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरा हुआ. और अपनी दूसरी आमद की बाबत भी उसने जो कुछ कह रखा है वो ज़रूर पूरा होगा. हमें ईमान रखना है. सो मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने को याद करते हुए हमें अपने ईमान में और मजबूत होना है. हमें और आगे बढ़ना है. हमें डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि यीशु हमेशा हमारे साथ है. वो हमारी मदद के लिए, हमारी शिफात के लिए आसमान पर हर वक्त मौजूद है. और जब भी हम उसे बुलाते हैं वो हमारे साथ होता है. उसे आने जाने के लिए किसी की अब इजाजतों की जरूरत नहीं, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है. आओ उसके वादों पे हमेशा ईमान रखे और भरोसा रखे कि वो सच्चे हैं, क्योंकि यीशु सच्चा है. वो जिंदा है, अपने वादों को इस लम्हे तक पूरा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा. उसके वादों पे भरोसा रखिए. दिल में शक मत कीजिए. तैयार रहिए. वो आ रहा है हमें लेने के लिए. वो तो कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. क्या मैं और आप यीशु के साथ हैं? ये सवाल है जिस पे हमें सोचना है. ऐसा ना हो कि यीशु तो हमारी मदद करना चाहे लेकिन हम उसकी मदद लेना ना चाहें. वो तो हमारा साथ देना चाहे लेकिन हम अपनी हरकतों और बातों और कामों की वजह से यीशु को इनकार कर दें कि हमें तेरी मदद नहीं चाहिए. आओ हम यीशु को आज ही अपना आप सौंप दें. हम यीशु से कहें, यीशु मुझे ले ले, अपने फजल में और अपने जलाल में मुझे छुपा ले. तेरे वादों पर मैं ईमान रखता हूँ जो पूरे हो रहे हैं और आइंदा भी होंगे. मुझे अपनी बादशाही के लिए तैयार कर दें.